कुटुंबियों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। बाहर का जो कुटुंब परिवार है ये संयुक्त है, आयु पूरी होते ही ये दूसरी पर्याय में और वो कुटुंब यहीं का यहीं रह जाता है। जीवत्व शक्ति समझ में आ जाए तो स्वामी जी की भाषा में मरण का जो भय रहता है उसका अभाव होता है। पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति। जो बोध कल रहे थे ज्ञान मात्र आत्मा है उसकी चर्चा इसी बीच में बीच बीच में कर लेंगे। जीवत्व शक्ति के संकृत शब्द इस प्रकार से हैं कि आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। स्वामी के बाद बोलने का भाव स्वामी जी की तो तेज जैसी गर्जना थी और अब उसके बाद यही विकल्प सताता है कि ऐसी अमृत वाणी के बाद भी क्या बोलेगा है। बहुता बहारी वाणी, एक धर्म को खोलने वाली वाणी, एक प्रवचन सुन ले और जैसा स्वामी जी कहते हैं वैसा परिणामों को अंतर्मुख कर ले तो उस पर्याय में रत्नत्रय धर्म प्रकट हो। ऐसी वाणी के बाद अंदर ही अंदर काफी समय तक विकल्प चलते हैं क्या बोला जाए। यही समाधान मिलता है कि उन्हीं के अनुसार बोलता चल बाकी कुछ नहीं। जीवत्व शक्ति में शब्द आए हैं आत्म द्रव्य है? पहला शब्द है आत्म द्रव्य, दूसरा शब्द है हेतु भूत। आत्म द्रव्य अपने आप से है लेकिन उस आत्मद्रव्य का भी कोई हेतु है। बात समझना है। स्वामी इस बात को खोलेंगे, उसके अनुसार अपन चर्चा करेंगे। यह आत्म द्रव्य ये पहला शब्द है, हूँ कौन तू मैं कौन हूँ, यही तो निर्णय हुआ कि मुझे सुबह उठकर नहाना है, मंदिर जाना है, विधान पूजन करना है, ये तो बदल हुआ। लेकिन मैं जानू हूँ, मैं अपने आप से अनजान हूँ, मुझे अपने चैतन्य जायज भगवान को सदाकाल अपना आराध्य बनाना है। चर्चा संग्रह में लिखा है कि ब्रह्मचारी राघवन जी की मुनिराज एक क्षण के एक भी आत्म ध्यान के बिना नहीं रहते। क्या लिखा है कि मुनि अवस्था का मतलब क्या, कि वैसी दिव्य अवस्था तेरी वर्तमान में नहीं है, पर ये तो नक्की है कि मैं कौन हूँ, कि मुनिराज एक क्षण के लिए भी, देखो हमारा हीन पुण्य है, इस समय मुझे बोलते श्री जी साक्षात वाणी सुनते उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। फिर भी हीन पुण्य में भी हम पुण्यहीन नहीं है, इस तरह की वाणी सुनने को मिलती है। हीन पुण्य तो है लेकिन पुण्यहीन हम नहीं है, बात समझ में आ गई। हीन पुण्य वाले तो है लेकिन पुण्यहीन बिल्कुल नहीं है, है? कि यहाँ ये तो निर्णय कर इस जीवन में कि मुनिराज की मुनि दशा का स्वरूप तो ऐसा है कि चर्चा संग्रह में राघवन जी के अनुसार विचार करें तो कहते हैं कि मुनिराज तो एक क्षण मात्र के लिए भी आत्म ध्यान के बिना नहीं रहे, एक क्षण भी आत्म ध्यान के बिना नहीं जमाते। और निर्णय होता है अपने स्वरूप का निर्णय कर कि मैं उसके बाद अगला शब्द यहाँ पर कि ऐसे आत्म द्रव्य की हेतु भूत एक चैतन्य शक्ति। कितनी बातें, तीन बातें कि मैं आत्म द्रव्य हूँ, कोई संसार में जितने भी द्रव्य है जीव द्रव्य निरोध से लेकर सिद्ध तक, निरोध से लेकर सिद्ध तक सभी आत्म द्रव्यों को धारण करने वाली उनकी हेतु भूत एक चैतन्य शक्ति। क्या कहा कि चैतन्य में चैतन्य की एक ऐसी शक्ति है। नवीन जी नहीं आ रही ना, नींद के काल में भी चैतन्य को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, सोने के काल में भी चैतन्य को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, अज्ञान दशा में भी चैतन्य को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है। समझ में आ गई बात, ये जाने अथवा न जाने, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वस्तु का स्वरूप सबके लिए समान है। जानने वाला सुखी होता है, नहीं जानने वाला दुखी रहता है, जानने वाला मुक्त होता है और नहीं जानने वाला संसार में लगता है। बस इतना सा अंतर है जानने और नहीं जानने का, लेकिन वस्तु का स्वरूप सबके लिए समान है। ज्ञानी के लिए वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञान में परिवर्तन होता, अज्ञानी के लिए वस्तु में कोई कमी नहीं रहती। वस्तु तो जैसी ज्ञानी के लिए है वैसे अज्ञानी के लिए होती है। समझना होगा स्वामी जी को भी संस्कृत आदि प्रथम कर अभ्यासी प्रवचन है, कई जगह स्वामी जी मूल संस्कृत के शब्दों का जो क्यों आपको सूक्ष्म है तो अनेक प्रकार के कुछ प्रकट हो जाए। यो नहीं तो एक ही भाषा का गौतम जलधर भगवान को कितनी भाषाएं आती है, 700 लघु भाषाएं और 18 माँ, ये तो जिंदगी है। भगवान ने ऐसा लिखा है कि ऐसे संजात भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो नहीं मान है सोचम तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के सोचम में एक चैतन्य जाए भगवान आत्मा ही दिखाई देता। बाहर में सोचम में 700 भाषाओं का ज्ञान हो, 18 महाभाषाओं का ज्ञान हो, बहुवेदी, परंतु मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला सोचम कौन सा, सर्व समाधान का कारक जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है। अभी भी स्वामी जी के प्रवचन में सुख ज्ञान की चर्चा है और उसी समय स्वामी जी ने जोड़ दिया भाव सुख ज्ञान कौन सा, भाव सुख ज्ञान जो ज्ञान चैतन्य जाए भगवान आत्मा को ग्रहण करे, धारण करे, पकड़े, उसका स्वरूप जाने, वो उतना सा भाव सुख ज्ञान वो मोक्ष का कारण है। बाकी का ज्ञान तो एक तरफ धर लो युवती भाषा में, बाकी के ज्ञान को खेती में बंद करके रख देना चाहिए। इतना सा ज्ञान कार्यकारी है कि जिस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान अंतर्मुख होकर के निज चैतन्य जाए भगवान आत्मा को पकड़ता है, धारण करता है, उसके स्वरूप को जानता है। स्वामी जी कहते हैं शक्तियों के प्रवचन में कि जैसे कली बिंदु है, उदाहरण नहीं है कि जैसे कली बिंदु अपनी कली नहीं बिंदु उससे रंग रूप बिंदे हैं, खुशबू बिंदु है, ऐसे चैतन्य जाए भगवान आत्मा को जानने पर अनंत शक्तियों का ज्ञान भी वो तो है फूल का खिलना और उनका जैसे कली की सुगंध होती है वैसे शक्तियों का निर्मल परिणाम होता है, खुशबू निर्मल परिणाम होता है। आनंद आज आनंद गुण की भी चर्चा हुई कि सभी गुणों में मुख्य तो एकमात्र आनंद गुण है। वास्तविक कौन सा गुण मुख्य है, छे तो अनंत गुण स्वामी जब प्रवचन होगा व्याख्यान में, छे तो अनंत गुण पर मुख्य गुण कौन सा है, अनंत गुणों में आनंद गुण। कल रात्रि के व्याख्यान में अगर वैशाख ने भी एक उदाहरण दिया था, मतलब सिद्धांत बताया कि सातवे नरक के लायक दिया उच्छेदा जो ऊंचाई है कामने बनी और सर्वाधिक देव की एक आदमी दोनों की आयु 33 सागर की, हाथ से क्या फर्क है, एक हाथ हो या 2000 हाथ हो कितने उसे जागृत पड़ता है। कहते हुए यहाँ पर कोई कम जानता है या ज्यादा जानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कपड़ियों का प्रवचन हो, चाहे नयों का प्रवचन हो या कोई भी प्रवचन हो, ज्यादा जानने की अपेक्षा ज्यादा मुझे नहीं जानना है, मुझे तो आत्मा को जानना है। बात समझना स्वामी जी के प्रवचन में नवीन जी ने गुरुमुख्य गाई ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि हम शक्ति का प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, साथ हम शक्ति का प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, हम तो आत्मा को जानने के लिए आए, हम शक्ति का प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, हमें तो आत्मा जानना है। उस काल में श्रोता भी इस तरह की अंदर से लगन लगती, उनको दिल का पता नहीं था कि कौन सा गुण है, आज कैसे बताते हैं, हमारा कोई चर्चा विशेष समागम नहीं रहा है, इनसे भी वैसा वगैरह है जानते हैं जो वहाँ पता नहीं चलता। और साक्षात्व का काम जैसा वातावरण स्वामी जी के काम स्वामी जी का पुण्य और स्वामी जी की पवित्रता आज किसी ने पाचन में जितनी पाचन करने अंत मात्र भी दिखाई नहीं देते। हमारा सौभाग्य ऐसे कुछ निमित्त से आज हमको भी ये बात सुनने को मिल रही का निमित्त है, उनसे पहले ये बात नहीं। यहाँ आजीवत शक्ति का वर्णन है, इसमें स्वामी जी ने समाधान क्या किया, प्रश्न क्या था कि हम शक्ति का वर्णन करने के लिए नहीं आए, ये प्रश्न है। स्वामी जी ने जवाब क्या दिया कि शक्ति के द्वारा शक्तिमान पर जिसकी दृष्टि जाती है, बराबर अभी चर्चा ही नहीं समझे कि अशुद्ध नर को धारण करने वाला धर्मी आत्मा, ऐसा अशुद्ध में अर्थात राजा जी को धारण करना ये भी आत्मा का धर्म है, परंतु इसी काल में ज्ञानी की दृष्टि ऐसा ज्ञान करने पर ऐसा ज्ञान होने के बाद शुद्ध चैतन्य जाए भगवान आत्मा पर जाती है, तो राग के काल में भी ज्ञानी को चैतन्य जाए भगवान आत्मा शुद्ध ही अनुभव में आता है। बात नहीं मानी, लेकिन शर्त भगवानी है कि उसको जानकर वहाँ अटकना नहीं, राग को जानकर राग में अटकना नहीं, भेद को जानकर भेद में अटकना नहीं, शक्ति को जानकर शक्ति के ज्ञान में अटकना नहीं। शक्ति का ज्ञान ये नया ज्ञान है, शक्ति पुण्य का ज्ञान, शक्ति पिंड का ज्ञान, ये अवेदनय का ज्ञान है। भेदनय के द्वारा अवेदनय को जानने पर शक्ति और शक्तिमान का ऐसा ज्ञान प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है। बात समझ में आ गई, भेदनय के द्वारा शक्ति को समझना, शक्ति का स्वरूप समझना, लेकिन वही अटकना नहीं है, है? कहाँ जाना है कि जो भेद से एक शक्ति को जाना, ऐसी अनंत शक्तियों का धारी शक्ति पुंज शक्तियों का पिंड मैं हूँ ऐसा जानने तो पांच बोल स्वामी जी ने बताए हैं कि कैसा पता चले कि हमें शक्ति का ज्ञान हो जाए। तीन बातें, तीन शब्दों के द्वारा स्वामी जी ने इसका खुलासा किया, अस्ति गौरव अस्ति स्वीकृति और अनुभूति। कितने शब्द हैं? अस्ति स्वीकृति और अनुभूति, तीन शब्दों के द्वारा इन शक्तियों की चर्चा स्वामी जी ने प्रारंभ में की। कौन कौन से? अस्ति, स्वीकृति और अनुभूति। ये कहते हैं कि पहले तो 47 शक्तियाँ आदि अनंत शक्तियों की अस्ति जिसको मान कि है हयाति, केवल ऐसी 47 शक्तियाँ नहीं कितनी अनंत अंदर से आनी चाहिए, कितनी शक्तियाँ है कि 47 शक्ति नहीं। अनुभूति के बिना ज्ञान कोरा होता है, उसमें आत्मा को सुनने का उल्लास नहीं होता है ढाल में। अनुभूति के बिना चैतन्य जाए भगवान आत्मा की अनुभूति के बिना ज्ञान शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध ज्ञान में अभी स्वामी जी का प्रवचन जब शुरू हुआ तो प्रश्न किया था, बराबर कि प्रश्न किया, तो जिसने प्रश्न किया उसके लिए ये समाधान है, बराबर जिसको प्रश्न की ही जरूरत नहीं है उसके लिए समाधान भी नहीं है। जिसने प्रश्न किया उसके लिए समाधान है, जिसके लिए अंदर से जिज्ञासा है उसके लिए ग्रंथ है। मैं सबके पिंड चैतन्य गए भगवान आत्मा कहता हूँ, ऐसी जिनकी जिज्ञासा है ये समझने की जिसकी दरकार है उसके लिए रुकेगा। अनुभूति के बिना चैतन्य गए भगवान आत्मा की बात उचित नहीं है, उसमें उत्साह नहीं आता। सुनने के लिए आकर बैठ में जाएगा लेकिन उत्साह कहाँ से आएगा है? या तो सम्यक्त सन्मुख हो उसको उत्साह देता है, कर्म लब्धि में पहुंचा हुआ जीव या उसको जाने वाला जीव। जैसे सातवें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण करने वाले जीव का पुरुषार्थ अलग होता है, उस अलग पुरुषार्थ वाले के लिए जैसे सातवीं तैयार होता है मध्य गुण स्थान। बात समझ में आ गई? या तो इतनी तैयारी हो कि मैं अभी अपने चैतन्य जाए भगवान आत्मा को अपने ज्ञान के द्वारा ग्रहण करता हूँ, ऐसी तैयारी हो तो ऐसी शक्ति ऐसा शक्ति गुण शक्ति के ज्ञान में अटकना नहीं, आगे बढ़े तो मार्ग अवश्य मिलेगा। यहाँ आत्म द्रव्य पहला शब्द है, कौन सा द्रव्य है? आत्मद्रव्य। स्वामी जी इसकी व्याख्या में ये कहते हैं कि मैं आत्म द्रव्य हूँ, संयोग शरीर और उदारी भावों से भिन्न मैं आत्म द्रव्य हूँ, ये पहला उत्तर है। लिख लिया तो समझ में आ गए, कम से कम नींद तो नहीं आए। आत्म द्रव्य इसमें तीन चीजें लेने, आत्म द्रव्य आत्म गुण आत्म परिणाम। कितनी चीजें लेनी है? आत्म द्रव्य आत्म गुण और आत्म परिणाम। समझने की जो व्याख्या है आगे बोल देगा आपको, ये आत्म द्रव्य में कितनी चीजें लेनी है? ये आत्म द्रव्य आत्म गुण और आत्म परिणाम। तो बहुत बड़ी पर्याय कौन सी? तो स्वामी जी कहते शुद्ध पर्याय लेना, तो भाई उसके शुद्ध पर्याय भी क्यों लेना, उस काल में अशुद्ध पर्याय भी तो है। तो स्वामी जी कहते सुन तो सही, आत्म शक्ति होगी चर्चा सुनने के लिए आया है, तो यहाँ से आत्म शक्ति होगी चर्चा सुनकर मत जाना, ऐसा शक्ति संपन्न चैतन्य पिंड मैं हूँ ऐसा निर्णय करके जाना। हाँ, केवल शक्ति की चर्चा की बात नहीं, शक्ति की चर्चा सुनने के लिए नहीं आए तो मत आओ। कि ऐसा शक्ति पिंड चैतन्य जाए भगवान आत्मा मैं हूँ, शक्तिमान मैं हूँ। चर्चा सुनने के लिए तो आना शक्ति की, लेकिन जाते समय शक्तिमान बन करके जाना है। तो अनादिकाल से शक्तिमान ही, लेकिन पर्याय में उसकी स्वीकृति नहीं। अस्ति अनादिकाल से, अस्ति अनंतानंद शक्तियों की अस्ति अनादिकाल से है, अनंत काल से रहती ही रहेगी। ये तो वे अस्ति है, लेकिन उस अस्ति की जीव ने स्वीकृति नहीं की है। क्यों नहीं हुई? अस्ति के बाद दूसरे नंबर पर क्या स्वीकृति? अस्ति की स्वीकृति क्यों नहीं हुई? क्योंकि आगे उत्तर दिया अनुभूति नहीं होने। अनंतानंद शक्तियों की अस्ति अनाथ जाग रहे है और अनंत काल तक यूं ही रहने वाली है, प्रत्येक जीव में है, अस्ति तो है लेकिन स्वीकृति क्यों नहीं है? अरे भक्ति का आश्रय भूत चैतन्य द्रव्य अज्ञानियों को दिखाई, घूमने फिरने में, सोने खाने पीने में, भक्ति लगती है अज्ञानियों को। जल के आश्रय से चैतन्य की भक्ति तीव्रता में उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसे लोगों में कोई मस्ती नहीं बनती है। तो भक्ति में दो मुनिराज है, ज्ञानी है, जिनको चैतन्य बगीचा दिखाई दिया। उस चैतन्य बगीचे में ढूंढते ढूंढते कभी किसी जीव को ठका नहीं। विषय भोगों में बहुत घूमने वाले जीव को कुछ काल बाद नियम से भगान होती है, क्योंकि वहाँ सच्ची मस्ती आनंद नहीं है। और चैतन्य में निरंतर विहार करने पर भी कभी थकान नहीं होती। अरे ज्ञानी मुनिराज तो वहाँ से निकलने के बाद खेल का अनुभव करते हैं, सदा गुणस्थान अवधिपूर्वक शुभ राग में रहना ही चाहते। रहना पड़ता है, रहना नहीं चाहते तो कहाँ रहना चाहते। ज्ञानी जीव तो अपने स्वरूप में ही रहना चाहते। और सच्चा धर्म के अंत में मुनि जीवन का स्वरूप बताया, उसमें ये बताया कि मुनिराज कोई आए और ध्यान टूट जाए और विकल्प आए तो उसे देते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन ऐसे परिणामों की परिणति लगे कि मैं स्वरूप में जा सकता हूँ तो उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। बात समझ में चैतन्य स्वरूप अलौकिक है। किसके लिए अलौकिक है? विषय भोगों की रुचि वाले को वहाँ अलौकिकता नहीं दिखती, लेकिन अनुभूति वाले जीव को उसमें अलौकिकता दिखती। समय साहब कहता है कि काम भोग बंद की कथा में अनादि का काल बीत गया प्रभु है। केवल सीधे सुलभ नहीं है। अभी स्वामी जी के व्याख्यान में बहुमय बात आई थी, कठिन है असत्य नहीं। क्या शब्द है तो ध्यान से सुनो, बहुता पहाड़ी वाणी है। वास्तव में यदि अपने आप को मुक्त करना है तो इसके अलावा दूसरा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो चैतन्य हूँ। आज सुबह स्वामी जी के रोशनों का शक्तियों की दृष्टि से व्याख्यान सुन रहा हूँ। बहुत उसमें ये था कि आत्मा में सूक्ष्म नाम का एक गुण है। कौन सा गुण है भाई? सूक्ष्म नाम का। वो गुण द्रव्य में है, गुण में भी है और पर्याय में भी है। बात चली कि आत्मा में शक्तियाँ कितनी है, उस प्रसंग में कि इस संसार में जीवराशि जीवराशि से अधिक पुद्गल के परमाणु परमाणु से बात करें कि परमाणु सूक्ष्म है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, परमाणु पुद्गल का और इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, ऐसे आत्मा भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। बात समझना भी परमाणु के साथ आत्मा के स्वरूप को जोड़ा, सामान्य पना कितना कर दिया कि परमाणु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ऐसे आत्मा भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। वो भी अतिंद्रिय विषय है और आत्मा भी अतिंद्रिय का विषय है। इसमें भी अंतर इतना कि परमाणु से तो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, आत्मा सर्वस्त के जो वर्तमान ज्ञान है उसके द्वारा जाना जाता है। अंदर इतना सा ही है। अतिंद्रिय बना लिया, अतिंद्रिय बना सामान्य घटा करके आत्मा में सूक्ष्म नाम का गुण है ये बताया, लेकिन ऐसा होने पर भी असत्य नहीं है। जानिए सूक्ष्म है ये उसका स्वरूप है। सूक्ष्म का मतलब ऐसा सूक्ष्म नहीं कि वो असत्य हो। जान सकता है, जानने की तैयारी हो तो जान सकता है। असत्य नहीं है, कठिन है। कठिन किसके लिए बताओ? एक बार समाकरण में जाने वाला भी जो राग रुचि निरोध जाता है उसे बातें नहीं है, महिलाएं बातें करती है बहुत। ध्यान से सुनो प्रभु, अन्य क्षेत्र के सम पापन यहाँ नष्ट हो जाएंगे और यहाँ भी बातें करेंगे तो कहाँ मुक्त होंगे। ध्यान से सुनो, अपने कल्याण के लिए सुनो, समझ में आए तो सुनो, नहीं समझ में आए तो भी सुनो। भगवान आत्मा सभी के अनुभव में आप ज्ञान के वृद्धि के लिए नहीं। जैसे पंडित जी रविंद्र जी कहते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, ज्ञान की विशुद्धि के लिए सुनो। और बातें करते हुए सुनोगे तो विशुद्धि पे चली गई है। जीव मात्र आगे शब्द क्या है, आत्मद्रव्य हेतु भूत। क्या शब्द है, आत्मद्रव्य है। आत्मद्रव्य अपनी ही हेतु से हेतु शब्द है। आत्मद्रव्य अन्य हेतु से नहीं है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, केवल एक ही पंक्ति रखना मुझे काम होगा। बात समझना कि आत्मद्रव्य हेतु भूत, इतनी पंक्ति मिला के रखो और लिख लो, पढ़ लो, समझ लो अपने लिए। और समझ करके नहीं, समझते समय ही स्वरूप में लीन हो, क्योंकि सुख का और मुक्ति का मार्ग एक ही होता है। भगवत सुख का और मुक्ति का मार्ग एक ही है। जो सुख का मार्ग है वही मुक्ति का मार्ग है। सुख और आनंद किसी और रास्ते से और मुक्ति किसी और रास्ते से ऐसा नहीं है। सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग, मुक्ति का मार्ग एक ही है। वो कोई भिन्न भिन्न नहीं है। अगला शब्द लिखो आत्मद्रव्य हेतु। क्या आपको समझना है इसका, कि आत्मद्रव्य है तो आत्मद्रव्य के हेतु आत्मा में ही है। सुनना इसको गाने को कहीं आप तो उपयोग कर रहे। देखो सिद्धांत क्या है, क्या है सिद्धांत की जरूरत है। आत्मद्रव्य हेतु क्या अर्थ है भैया, कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है उसके हेतु अर्थात कारण, उसके हेतु अर्थात उपादान, उसके हेतु अर्थात सहायक, उसके हेतु अर्थात निमित्त मुझ में है, कहीं बाहर नहीं। समझ में आ गया प्रभु, क्या समझ में आ गया, कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ एक बात। दूसरा ये वस्तु व्यवस्था चल रही है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मेरे जो भी जीवन है, मेरे जो लक्ष्य है, जो मेरे प्रयोजन है, उसके हेतु मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। दूसरा शब्द मैं आत्मद्रव्य हूँ। आत्मद्रव्य हूँ इसलिए क्या, कि मैं आत्मद्रव्य हूँ इसका मतलब शरीर से भिन्न हूँ। दूसरी शक्ति की चर्चा है कि आत्मद्रव्य कैसा, स्थिति शक्ति वाला आत्मद्रव्य कैसा, आत्मद्रव्य कैसा, स्थिति शक्ति वाला मेरी हयाती अस्तित्व गुण के कारण से। रविवार मेरी हयाती अस्तित्व गुण के कारण से है, लेकिन उस हयाती में मेरा जीवन जीवन के शक्ति के कारण से। समझना रविवार, मेरा अस्तित्व मेरी मौजूदगी किस कारण से है, अस्तित्व कारण से, अस्तित्व गुण के कारण से। और अस्तित्व गुण नहीं मुझ में ही है, अनंत शक्तियाँ है। समझ में नहीं आएगी कैसी कैसी अनंत है। जैसे उत्सर्ग हो रहा हो द्वादशा में, स्वामी जी के लिए आया था अभी उत्सर्ग पढ़ा आप लोगों ने, जानते बहुत सब शब्द में द्वादश अंग आ गया, आया था प्रवचन, सब शब्द में क्या आ गया, द्वादश अंग आ गया। द्वादश अंग में एक अंग है, द्वादश अंग एक अंग है अंतःकृत दशा, कौन सा अंग है प्रभु, अंतःकृत दशा, और एक अंग है अनुत्तरोपपात दशा। नाम सुने कृत करने में नाम बनना, ये अंतःकृत दशा और एक आता है अनुत्तरोपपात दशा, समझना जी बोलो। अब ये दो दशाएं ऐसे है कि इस ये प्रत्येक तीर्थंकर के कारण है, अंतःकृत दशा कि दस मुनिराज प्रत्येक तीर्थंकर के काल में नियम से होते, प्रत्येक तीर्थंकर का जिन पर भयंकर से भयंकर उत्सर्ग होता है और उत्सर्ग के काल में वे आत्म ज्ञान से उतरते नहीं और केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त करते, ऐसे अंतःकृत अंत कर दिया है विकारी भाव कर्मों का जिन्होंने, साधु द्रव्य कर्मों का जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसे ही दस मुनिराज और होते हैं जिन पर उत्सर्ग होते हैं लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अनुत्तरोपपात विजय आदि विमानों में जिनका जन्म होता है, जिनका विजय आदि विमानों में जन्म होता है बाहर में उत्सर्ग होने के काल में उत्सर्ग सह करके मोक्ष नहीं जा पाते, वो तो जाते हैं अनुत्तरोपपात के लिए, विजय आदि वैजयंत आदि विमानों में जिनका जन्म होता है, ऐसे दस मुनिराज नियम से होते हैं और दस मुनिराज ऐसे भी होते हैं जिनको केवल ज्ञान नियम से प्राप्त होता है, उनके जीवन का वर्णन करने वाले ये दो अंग हैं। बात बात शक्ति की कि बाहर में उत्सर्ग होता है, अंतरंग में वो उत्सर्ग के परमाणु चैतन्य जायक भगवान आत्मा को स्पर्श भी नहीं है, ऐसी पर को स्पर्श नहीं करने वाली अस्पर्शक नाम की शक्ति सदाकाल चैतन्य आत्मा में विराजमान होती है। बात नहीं, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियाँ यहाँ तो केवल चैतन्य की चाहिए, नहीं आई बात समझने को, तो क्या समझना कि थोड़ी सी बीमारी हो जाए शरीर में व्याधि हो जाए, अरे मैं तो बीमार हो गया, मुझे तो भोजन प्राप्त नहीं हुआ, मेरे तो इतने सिर दर्द रहता है कि प्रभु उपयोग को वहाँ से हटा ले। बात समझना, उपयोग को वहाँ से हटा ले, टोडर मुनि ने सिद्धांत बताया, बहुत अच्छा सिद्धांत है कि जहाँ उपयोग जाता है वहीं का विचार होता है, याद रखना इस बात, जहाँ उपयोग जाता है वहीं का विचार होता है, उपयोग यदि अपने स्वरूप पर रहे तो विचार किसका होगा, स्वरूप का होगा, स्वरूप का विचार क्यों नहीं है, जवाब मिल जाएगा है? चैतन्य जायक भगवान आत्मा पर उपयोग रहे तो चैतन्य जायक भगवान आत्मा का विचार है। कल भाई ने प्रश्न किया था कि धारणा और ग्रहण में क्या अंतर है, कि धारणा में चैतन्य जायक भगवान आत्मा सदाकाल रहे, उपयोग वहाँ रहे तो विचार भी उसी का होगा, उपयोग शरीर पर रहेगा तो विचार उसका होगा, उत्सर्ग के काल में मुनिराजों का उपयोग नियम से वहाँ नहीं था, उपयोग पर नहीं था, उपयोग तो अपने स्वरूप में था, सारी करामात उपयोग की है, आत्मदर्शन क्यों नहीं हुआ, सारे मूर्तियों का यही प्रश्न रहता है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ धीरे से वैसे प्रश्न यही करते हैं कि हमें चैतन्य जाए भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे हो, है क्या नहीं प्रश्न ये है, ये भी जवाब है। उपयोग को चैतन्य जाए भगवान आत्मा पर ले जाए, वही उसका रमण कराए तो उसका अनुभव भी हो, निर्णय भी हो, उसका स्वरूप भी समझना कि आत्म द्रव्य की शक्तिया जिन सामान्य मत समझना। एक बार का प्रसंग है, कोटा गया था और सुबह समय साथ की कही गया था और शाम को 47 शक्तियों की चर्चा की। युवल जी के पास जाना हुआ, तबियत ज्यादा ही खराब थी उनकी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से दो तीन बार के बाद एक बार प्रसंग बना, उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने मना कर दिया। विषय क्या लिया आपने, सुबह समय था उसे जाता पहले जाता और शाम को सकती, तो अभी बात मुझे बतानी है। उन्होंने मना कर दिया था कि शक्तियों का रहस्य खोलने की ताकत सिर्फ कुछ भी देती है, बोले आप उस विषय को मत दो। मैं तो इस बात को भी ध्यान में रख रहा हूँ और रजनी भाई के आदेश को भी मान रहा हूँ, ये शक्तियों के चर्चा चला वो बात भी ध्यान है बराबर, तो इतनी सावधानी रखता हूँ कि बार बार पढ़ जाता हूँ। पहले कभी मुझे फिर पढ़ी फिर पढ़ी कि थोड़ी सी भी भूल न करो, व्याख्या नहीं कि उसमें ये शब्द आया, एक एक शब्द भी कितने मन कितना मर्म है, शब्द क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हेतु लिखा हुआ है कि आत्म द्रव्य हेतु भूमि है कि यहाँ एक शक्ति की चर्चा नहीं समझना बबलो। समझ ने ऐसा कहा क्योंकि जीवन के शक्ति लक्ष्य है और किसी आदि शक्तियाँ को लक्ष्य है, तो जीवन के शक्ति में बाकी सारे जितने धर्म है वो ग्रहण कर लेना। इसलिए आत्म द्रव्य हेतु भूत अगला शब्द है। अब मुझे नहीं पता कितनी शक्तियाँ पूरी होगी, सामान्य आपसे एक एक कंपनी का करके भी सोलह शक्तियाँ पूरी कर लेंगे, लेकिन एक एक शक्ति का मर्म क्या है, मुख्य रूप से तो कही शक्ति कि आत्म द्रव्य अगला शब्द है हेतु भूत। हेतु भूत का अर्थ अपनी तरह से गहराई से समझना, क्योंकि निमित्त से जानने की आदत जीव को पड़ी, निमित्त से जीवन चलता है, भोजन से जीवन चलता है, आहार से जीवन चलता है, आयु कर्म से जीवन है, ऐसे निमित्त दूर दृष्टि जीव की पड़ी। स्वामी जी पहली शक्ति से ज्ञान जानने के बाद कहते हैं कि सच्चा ज्ञान भी शक्ति मान को जानने के बाद प्रकट होता है और शक्ति क्रिया भी शक्ति मान को जानने के बाद प्रकट होती है। सच्चा ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान जो जीव को दोषी मुक्त मार्ग की ओर ले जाता है, और शक्ति क्रिया अर्थात अशुद्धता का नाश और शुद्धि की वृद्धि इसी से क्या सत्य मिल रहा है। आत्म द्रव्य हेतु भूत इतनी पंक्ति जरूर लेके रखेगा, हेतु भूत, हेतु भूत का अर्थ ये है कि उपादान शक्ति भी मुझमें है और निमित्त शक्ति भी मुझमें है। निमित्त शक्ति किस अपेक्षा से कि एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में रहता है। दो चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि शक्तियों के संबंध में सामान्य बातें जो पूज्य गुरुदेव जी ने बताई वो कि यहाँ द्रव्य की परिभाषा अलग प्रकार से है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप लक्षण है जिसका वर्ण है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप लक्षण है जिसका द्रव्य है। एक एक शक्ति में एक एक शक्ति अनंत शक्ति में व्यापक है, एक एक शक्ति कैसी है अनंत शक्ति में व्यापक है, एक एक शक्ति अनंत शक्ति में निमित्त है, एक एक शक्ति में ध्रुव उपादान चलित उपादान भी है। बात समझ में आए, इसलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया
कि हेतु का मतलब निमित्त भी स्वयं और उपादान भी स्वयं। एक शक्ति अनंत शक्ति में निमित्त है, इस अपेक्षा से तो निमित्त बना है, और एक एक शक्ति में बहुत परमात्मा नहीं, नहीं क्या है चर्चा समझ का ही प्रश्न है कि मुनिराज आहार करना चाहते हैं और उपवास रखना नहीं, सबके लिए जरूरी है उदाहरण मान सिद्धांत को कुछ और क्या है कि मुनिराज आहार लेना चाहते हैं या उपवास करना चाहते हैं तो उनके चाहेंगे तो क्या है आहार ले लेंगे नहीं आहार भी लेते हैं उपवास करते हैं कि नहीं तो उपवास भी करते हैं तो क्यों छह महीने उपवास करते कितने छह महीने और उपवास करने वाले मुनिराज भी दो प्रकार के होते हैं घाटायुक्त मुनिराज और एक अघाटायुक्त मुनिराज। घाटायुक्त मुनिराज मात्र छह महीने उपवास कर सकते हैं, अघाटायुक्त मुनिराज एक वर्ष तक उपवास कर सकते हैं। बात समझ में आ गई वो कभी चर्चा प्रसंग आय पर करेंगे। घाटायुक्त मुनिराज अघाटायुक्त मुनिराज के संबंध में नहीं होंगे, एक एक माह तक एक एक माह तक एक एक वर्ष तक उपवास करते हैं। तो सामान्य बात यह कि उपवास करना अच्छा लगता है उनको या आहार करना अच्छा लगता है, न दोनों उपवास करना भी अच्छा नहीं लगता। देखो चारित्र का पक्षधर तो क्या रहेगा, चारित्र का क्रिया का जिसको पक्ष है वो तो ये कहेगा कि उपवास करना तो अच्छा होता है और मुनिराज को उपवास करना भी अच्छा नहीं लगता और आहार लेना भी अच्छा नहीं लगता, स्वरूप में रहना अच्छा लगता है। स्वरूप में रहने के लिए जिन परिणामों की आवश्यकता है उन परिणामों की संभाल रखना अच्छा लगता है। यदि परिणाम शरीर में प्रमाद दिखे तो आहार लेते हैं और शरीर में शिथिलता दिखे तो उपवास करते हैं। आहार लेते शरीर में शिथिलता दिखे तो आहार लेते हैं और शरीर में प्रमाद दिखे तो उपवास करते हैं, उनको क्रिया का पक्ष नहीं होता। समझ में आ गया भाई क्या कि क्रिया का पक्ष उनको नहीं होता, उनको तो परिणाम संभाल का पक्ष होता है। यदि उपवास करने से शरीर में शिथिलता दिख रही हो तो आहार लेते और शरीर में प्रमाद दिखता है तो उपवास करते हैं, उनको आहार से प्रयोजन नहीं उपवास से प्रयोजन नहीं, उनको तो अपने स्वरूप में जाने का प्रयोजन होता है। बराबर आत्म द्रव्य हेतु भूत हेतु शब्द अंडरलाइन करना कि मेरे सारे काम मेरे से ही होते हैं, मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है कि अन्य की आवश्यकता मुझे नहीं है। आत्म द्रव्य हेतु भूत आत्म द्रव्य के कारण भूत मैं बात नहीं किसके कारण प्रश्न होगा कि आत्मद्रव्य हेतु भूत ये तो समझ में आ गया कि आत्मा को अपना जीवन जीने के लिए जिन साधनों की निमित्तों की शक्तियों की सामर्थ्य की आवश्यकता है वह सभी शक्तियाँ ये सभी सामर्थ्य ये सभी निमित्त ये सभी उपादान मेरे भीतर है, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शक्तियों का स्वरूप समझने आ गया ऐसा कब समझना सामान्य प्रश्न है बोलिए कि शक्तियों का स्वरूप समझ में आ गया ये कब समझना कि मैं परिपूर्ण हूँ मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ये जिस दिन जिस क्षण निर्णय हो जाए समझना मुझे शक्तियों का स्वरूप समझ में आ गया और बड़ी आवश्यकता लग रही हो। ये भी स्वामी जी ने बताया हुआ है कि शक्तियों का स्वरूप समझ में आ गया ये कैसे पता चले, स्वामी जी तो और भी कहते हैं आगे बताकर खुलासा करते हैं कि शक्तियों का निर्णय पर देखने से नहीं होता, पर की ओर देखने से अपनी शक्तियों का निर्णय नहीं होता। अपने मुंह देखने से बाबू भाई जी कैसे कैसे चमत्कार होते हैं ऋषियों ने बताओ। चौथा इंद्रिया है ना, वहां भी ये बात बताई कि ऋषिया तो असंख्यात प्रकार की है लेकिन सिर्फ चौथा इंद्रियों की चर्चा करते हैं। उनमें बुद्धि विद्या अलग प्रकार की है। पहले चार श्लोकों में तो बुद्धि विद्याओं का वर्णन है, पूरे दस श्लोक है, फिर दोबारा जो लग जाएंगे तो चलाएंगे उसमें भी आत्मा की ही महिमा है। लेकिन चैतन्य जाए भगवान आत्मा के आश्रय से जीव में बाहर में भी कैसे कैसे चमत्कार है। द्वादशांग ध्यान का पाठ वचनों के द्वारा अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, ऐसी वचन बल शक्ति ऋषि करो। अंतर्मुहूर्त में बैठा भी कुछ पाठ नहीं है, द्वादशा पाठ है एक अनिवार्य भी होती है। जब प्रसंग आ गया और वही इन दिनों दिमाग में चली रहा है जीवन का तो बताता हूँ। अनिवार्य भी देवों के लिए होती, देवों के तो देवों के जो अनिवार्य होती है कहते हैं कि एक देवों की रिद्धि और एक मुनिराजों की अनिवार्य दोनों में क्या है। तो उसमें क्या लिखा है कि देवों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य इंद्र का सभी देवों में होती है और उसे इंद्र की अनिवार्य रिद्धि है। उस रिद्धि को 100,000 से गुणा करो, किससे गुणा करो 100,000 से गुणा करो तो 100,000 गुना ज्यादा होते ना कौन अनिवार्य। देखो भीतरा जी चैतन्य भगवान आत्मा की ही महिमा है क्योंकि उसकी आराधना के काल में रिद्धियां संयमियों को ही प्रकट होती है, असंयमियों को प्रकट नहीं होती है। तो इंद्र की जो रिद्धि है उसको 100,000 से मल्टीप्लाई करो है? और उस जो गुणाकार आएगा और ये जो मुनिराज की रिद्धि है इस रिद्धि को उससे भाग दे दो, जो भी अंश आ जाएगा उससे 100,000 ले भाग की रिद्धि नहीं। समझ मानी मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि वो है। अब ये हो गया प्रथम नदी प्रकरण में 257 नंबर का श्लोक है। बात समझ में आ गई तो कहने का मतलब मुनिराज की अनिवार्य और संयमियों की अनिवार्य आत्मज्ञानियों की अनिवार्य और देवादि की अनिवार्य में जगन्नाथ नाम का नहीं बात नहीं। 1 करोड़ गुना ज्यादा होती है सामान्य तौर पर, ये 1 करोड़ गुना तो खाली जन के नाम है, क्यों समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा है उसमें कि अणु जितना शरीर बना सकता है या कोई भी ये तो होगा, और अणु जितने शरीर में जो शरीर बनाया जो चित्र है अणु जितने शरीर वाला स्वयं तो उतना शरीर बनाया ही उस चित्र में, और वहीं पर चक्रवर्ती की सेना की रचना करना चक्रवर्ती की सेना की रचना ये वो हनुमान जी वाले देवों के संबंध में इतना है कि आत्मा की आराधना में लाभ ही लाभ है, नहीं करने में नुकसान ही नुकसान है। और यहाँ तो चक्रवर्ती की सेना आदि की चर्चा नहीं, आत्म चक्रवर्ती की चर्चा है कि इसकी सेना कितनी बड़ी है। 5 मिनट रहेंगे सामान्य अर्थ करके पूरा करते हैं कि जिससे चर्चा हो चलाऊंगे दोस्तों में आत्म द्रव्य हेतु आत्म द्रव्य को धारण करने वाली अनंत शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ एक चैतन्य शक्ति है कि आत्म द्रव्य में ये वाक्य ध्यान से सुनना इसके बाद पूरा करते हैं। आत्म द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में आत्म द्रव्य पना धारण करना चैतन्य बना धारण करना ये है लक्ष्य निर्विकार, उसको जीवन के शक्ति कहते हैं। इसी से चर्चा बोलते हैं